namasitteya om namasitteya om namasitteya om shuddhatmane namaha namo arihantanam namo siddhanam namo ayariyanam namo vajjayanam namo loe savasahunam antai macharahiya jai jara marananta poradha samsara layatamaham जीर्णच्छिन्ना जीर्णम वंदे। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। तृतीय पुस्तक जो अभी हमारा स्थिति विभक्ति अर्थाधिकार चल रहा है, उसमें हम पृष्ठ संख्या 12 पर आ गए हैं। 1-2 देखिए, अभी अपना अध्याच्छेद का जो उत्कृष्ट अध्याच्छेद और जघन्य अध्याच्छेद का विषय समाप्त हुआ था। अब यहाँ जघन्य अध्याच्छेद है, उसकी ओग की बात हमने देखी थी। उत्कृष्ट अध्याच्छेद किसको कहना, तो मोहिनी की बात चल रही है, तो 70 कोड़ाकोड़ी सागर को उत्कृष्ट अध्याच्छेद कहा था, और मार्गणाओं में जहां जितना बनता है उसकी भी बात हमने देखी थी। अब जघन्य अध्याच्छेद में पहले ओग की अपेक्षा बताएंगे, तो जघन्य ये स्थिति कितनी है मोहिनी की, जघन्य में जघन्य कितनी स्थिति रह सकती है, तो एक समय वाला एक निषेक। कब होगा वो? 10वें गुण क्षपक सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में लोभ मोहिनी वाली संज्वलन लोभ की एक स्थिति बाकी है, तो वो जघन्य अध्याच्छेद कहलाएगा। अब उपशम श्रेणी में नहीं लेना, क्योंकि उपशम श्रेणी में सभी जो कर्म है वो उपशमित हुए हैं और उनकी स्थिति तो अंत कोड़ाकोड़ी सागर है। बंद तो है ही नहीं ना सूक्ष्म संप्राय में, सत्ता की ही बात चल रही। 11वें में गया जीव तो भी वहां अंत कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति है। देखो कल हमने देखा था अंत कोड़ाकोड़ी सागर कहाँ कहाँ है, तो ये अकशाई में वो आएगी बात, अकशाई जीवों में भी अंत कोड़ाकोड़ी सागर आगे के नेक्स्ट 13 पृष्ठ पर आने वाली है बात। तो यहाँ हम देखते हैं, ये तो ओग की अपेक्षा एक समय वाली एक स्थिति वो तो आसान है समझने में। अब आदेश की अपेक्षा ने मार्गणाओं में देखेंगे। अब जहां जहां क्षपक सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान जिन मार्गणाओं में संभव है, उन आदेश की अपेक्षा, उन मार्गणाओं की अपेक्षा भी एक समय वाली कहेंगे। तो ये कहां कहां संभव है, तो सामान्य मनुष्यों में संभव है, पर्याप्त मनुष्यों में संभव है, मनुष्यनी में कहेंगे तो भी है, अकेले पंचेंद्रिय कहे तो भी कह सकते हैं, उसमें पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस पर्याप्त, उसी प्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, औदारिक काय योगी, या अकेले काय योग कहेंगे तो भी उसमें घटित होता है, अपगत वेदी कहेंगे तो भी है, लोभ कषाय कहेंगे तो भी घटित होता है, क्योंकि उस समय लोभ कषाय का ही तो उदय है, और मतिशुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी ऐसा कहेंगे, मन परे ज्ञानी, या सूक्ष्म संयम मार्गणा की अपेक्षा सूक्ष्म सांप्राय संयत, या अकेले संयत कहे, या चक्षु अचक्षु दर्शनी कहेंगे हम, अवधि दर्शनी कहेंगे, शुक्ल लेशा वाले कहेंगे, भव्य सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, संज्ञ और आहारक, इन सभी मार्गणाओं में क्षपक सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान संभव है, तो उन मार्गणाओं की अपेक्षा भी जघन्य स्थिति एक समय की घटित होती है। ये बात ख्याल में आई? अब आगे बढ़ते हम आदेश निर्देश अभी देखेंगे। हम आदेश निर्देश की अपेक्षा नारकियों में, अब नारकियों में जघन्य स्थिति किसके होगी उसकी बात करते हैं। नारकी तो संगी पंचेंद्रिय जीव है, तो संगी पंचेंद्रियों में मिथ्या दृष्टि अवस्था में अगर हम देखते हैं, कम से कम स्थिति तो अंत कुड़ाकुड़ी तो होगी ही, अंत कुड़ाकुड़ी सर। अब यहां नारकियों में तो घटित करना है, तो वो जीव नारकी होना चाहिए। तो यहां क्या कहते, पहले पढ़ेंगे फिर उसका अर्थ देखते हैं। नारकियों में मोहनीय की जघन्य स्थिति हजार सागर के सात भागों में से पल्योपम के संख्यातवे भाग कम सात भाग प्रमाण होती है। सात भागों में से सात भाग यानी पूरा हजार सागर, और उसमें से कम कितना करना है, पल्य का संख्यातवा भाग। कम क्यों क्यों, क्योंकि असंगी जीव, असंगी पंचेंद्रिय, असंगी यानी असंगी पंचेंद्रिय नरक में या भवनवासी व्यंतर में जा सकते हैं मरकर। वो अधिक से अधिक मिथ्यात्व की स्थिति बांधेंगे तो एक हजार की बांधते हैं, और कम से कम बांधते हैं तो कितने बांधते हैं, तो हजार सागर में पल्य का संख्यात्वा भाग कम, इतनी रेंज में ही उनका मिथ्यात्व बंधेगा। तो असंगी पंचे वो तो उनका एक मिथ्यात्व गुण स्थान ही है, फिर भी उसमें ये रेंज होगी मिथ्यात्व के बंध के। तो ये सात भागों में से सात भाग का अर्थ होता है हजार सागर, और उसमें कम कितना करना है, तो पल्य का संख्यात्वा भाग। तो ऐसा कोई असंगी जीव इतनी स्थिति बांधकर नरक में उत्पन्न हुआ है, तो उत्पन्न हुआ है तो विग्रह गति से जो नरक में आता है, कारमान का योग है, तो उसके पहले समय में उसका बंध कैसे है, तो असंगी जैसा है। नारकी संगी पंचेंद्रिय वैसा उसको अभी बंध शुरू नहीं हुआ, उसका बंध असंगी जैसा है, यानी वो नार जीव तो नारकी है, क्योंकि विग्रह गति से ही पहले ही समय से उसके नरकायु चालू हो गई, नरक गति का उदय चालू हो गया, उस जीव को हम नारकी कहेंगे। फिर भी अभी कम सत्ता के साथ आया है और कम बंध रहा है, उस अपेक्षा से उसकी स्थिति कितनी है वहां पर मोहनीय की, तो हजार सागर में पल्य का संख्यात्वा भाग कम। बाद में नारकियों में इतनी कम स्थिति नहीं पाई जाएगी, क्योंकि वो तो मिथ्या दृष्टि है, और कम से कम तो अंत कोड़ाकोड़ी सागर का बंध तो करेगा ही करेगा। तो यहाँ क्या कहते हैं, देखो, नारकियों में मोहनीय की जघन्य स्थिति हजार सागर के सात भागों में से पल्योपम के संख्यात्वे भाग कम सात भाग प्रमाण होती है। ये मिथ्यात्व का बंध इसलिए सात में से सात कहा, यदि ज्ञानावरण का हो तो क्या कहेंगे हम, सात में से तीन भाग। नाम कर्म गोत्र कर्म हो तो सात में से दो भाग। जैसे हम देखते हैं संगी पंचेंद्रियों में उत्कृष्ट बंध कितना है, तो सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर, वो तो मिथ्यात्व का है। ज्ञानावरणी का उत्कृष्ट कितना है, तो सत्तर कोड़ाकोड़ी के सात भाग करो, एक भाग का प्रमाण कितना हुआ, दस कोड़ाकोड़ी, उसको तीन से गुणा करो, सात भागों में से तीन भाग यानी तीस कोड़ाकोड़ी सागर, सात भागों में से दो भाग यानी बीस कोड़ाकोड़ी सागर। ऐसे ही असंगी पंचेंद्रिय उत्कृष्ट बंध कितना करता है मिथ्यात्व का, हजार सागर, वहां सत्तर कोड़ाकोड़ी के सात भागों में से सात भाग लिए थे, अब यहां हजार सागर में से सात भाग के सात भाग लेना, यानी हजार सागर पूरे लेना, वो तो उत्कृष्ट बंध है, और जघन्य बंध उसमें से पल्य का संख्यात्वा भाग कम करें। तो हम यहां पढ़ते हैं, इसी प्रकार पहली पृथ्वी के जीवों के, ये कहां संभव है, क्योंकि असंगी मरकर तो पहली पृथ्वी में जाते हैं, पहले नरक के नारकी होते हैं। पहली पृथ्वी का अर्थ होता है वो पृथ्वी का एक की बात नहीं है, प्रथम नरक के नारकी की बात है। तथा पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, यानी पंचेंद्रिय तिर्यंच ये नरक में जन्म लेने के बदले असंगी पंचेंद्रिय जीव इतनी स्थिति के साथ तिर्यंच पंचेंद्रिय में उत्पन्न होता है, तो विग्रह गति में उसका पहले समय का बंध असंगी जैसा है, तो वहां भी इतनी उसकी स्थिति संभव है। नरक की बात नहीं, असंगी में से जन्म लेने वाले की बात है। जैसे नरक में घटित किया है, ऐसे ही इसी पद्धति से पंचेंद्रिय तिर्यंच में भी घटित कर सकते हैं। पंचेंद्रिय तिरंश पर्याप्त में घटित कर सकते हैं। पंचेंद्रिय तिरंश योनिमति, पंचेंद्रिय तिरंश लब्धि अपर्याप्त, मनुष्य लब्धि अपर्याप्त, देव, भवनवासी, व्यंतर, ये जो असंगी कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है उसकी बात है। सामान्य से कहना है तो देव कहेंगे, और विशेष कहाँ उत्पन्न होते हैं असंगी मरकर, भवनवासी या व्यंतर में ही उत्पन्न होते हैं। वो ज्योतिषियों में उत्पन्न नहीं हो गए, वो व्यंतर का व्यंतर दिख रहा है। और पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त जीवों के जानना चाहिए, क्योंकि पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त है, उनकी इतनी कम स्थिति नहीं बनती है, फिर भी असंगी में कम स्थिति बांधकर उसमें उत्पन्न होने के पहले समय में ये बात संभव है। विशेषार्थ, असंगी पंचेंद्रिय के मोनिय का यह उत्कृष्ट स्थिति बंध लिखा है, परंतु जघन्य स्थिति बंध होना चाहिए, उत्कृष्ट के बदले जघन्य करना। वहां जघन्य स्थिति बंध पल्य के संख्यातवे भाग कम हजार सागर प्रमाण होता है, क्योंकि अगर उत्कृष्ट कहेंगे तो पूरा हजार सागर कहेंगे, ये जघन्य कहना है ना हमें। हजार सागर में से पल्य का संख्यातवा भाग कम कर दो, इतने वहां जघन्य स्थिति बंध होता है। करेक्शन क्या करना समझ में आए? हाँ। और यह जीव सामान्य से नारकियों में, सामान्य से नारकियों में अर्थ क्या है, यह असंगी पंचेंद्रिय नरक में उत्पन्न हो सकता है, ये तो सामान्य कथन है, और विशेष कथन करना है तो प्रथम नरक में उत्पन्न होता है ऐसा कहना पड़ेगा। इसलिए सामान्य से नारकियों में, प्रथम पृथ्वी के नारकियों में, ये विशेष हुआ। हाँ हाँ, जघन्य में उत्कृष्ट क्या होती है? असंगी पंचेंद्रिय की मोनी की जघन्य स्थिति कितनी बनती है? नहीं ना बनती, कम से कम कितनी बनती है उसी की तो बात चल रही ना। तो पल्ले का संख्यात्वा भाग कम हजार सागर, और उत्कृष्ट कितनी बंधेगी? हजार सागर। बीच वाले सभी भेद बन सकते हैं, एक एक समय से बढ़ते हुए स्थिति के अलग अलग भेद, उनमें बंध संभव है, तो हमें यहां जघन्य बंध की बात लेनी है। फिर पढ़ते विशेषार्थ शुरू से। असंगी पंचेंद्रिय के मोनिय का जघन्य स्थिति बंध पल्य के संख्यातवे भाग कम हजार सागर प्रमाण होता है, और यह जीव सामान्य से नारकियों में, प्रथम पृथ्वी के नारकियों में, वो जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकता है उसकी बात चल रही है। देवों में ये सामान्य कथन हुआ, और पर्टिकुलर उसमें कौन से देवों में उत्पन्न होते, तो भवनवासी और व्यंतर देवों में, ज्योतिषकों को छोड़ा। तथा मनुष्य अपर्याप्तकों में मरकर उत्पन्न हो सकता है, यानी ये पंचेंद्रिय जीव लिए है, नारकी, देव और मनुष्य। इसलिए तो ऊपर तो तिरंशों की भी बात ली है, पंचेंद्रिय तिरंश, पंचेंद्रिय योनिमति, वो भी सभी पंचेंद्रिय जीव लिए हैं। पंचेंद्रियों की जघन्य स्थिति बंध अंत कोड़ा कोड़ी सागर है, फिर भी असंगी में से उनमें उत्पन्न होने वाला जीव लिया है, इसलिए वो हजार सागर वाला वो ले लेंगे। नरक जैसे कहां कहां संभव है उसकी बात चल रही है। इसलिए तो इन मार्गणाओं में मोनिय का जघन्य अध्याच्छेद उक्त प्रमाण कहा है। मात्र ऐसे असंगी जीव को इनमें उत्पन्न कराने के पहले, ये असंगी पंचेंद्रिय उत्पन्न होता है उसकी बात है, एकेंद्रिय उत्पन्न होता है उसकी बात यहां नहीं उठाई है। तो ऐसे असंगी जीव को इनमें उत्पन्न कराने के पहले प्राक्तन सत्व इससे अधिक नहीं रखना चाहिए। सत्ता में जो कर्म पड़ा है, प्राक्तन सत्व ने कर्म का जो सत्व है, सत्ता में पूरे कर्मों की स्थिति जो है वो इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि असंगी में उत्पन्न होने के पहले लंबी स्थिति बांधकर वहां गया होगा तो अधिक स्थिति भी संभव है। इसलिए ऐसा ही असंगी पंचे निजे चाहिए कि जिसकी सत्ता में जो कर्म है उसकी स्थिति इससे अधिक न हो और इतना कम से कम बंद करके यहां आया हो। तथा पंचेंद्रिय तीरें चारी चार अवस्था वाला असंगी पंचेंद्रिय भी होता है, क्या कहते हैं उनको इस लिस्ट में क्यों नहीं लिया? पंचेंद्रिय तीरंज, पंचेंद्रिय तीरंज पर्याप्त, पंचेंद्रिय तीरंज योनिमति, क्योंकि वे जीव क्या है, वो जो पंचेंद्रिय इतनी मार्गणा है तो उसमें तो असंगी पंचेंद्रिय इंक्लूड है ही ऑलरेडी, यानी असंगी में से उसमें उत्पन्न होने की बात ही नहीं करनी चाहिए, वो ऑलरेडी असंगी पंचेंद्रिय है, क्योंकि उसमें संगी असंगी दोनों इंक्लूडेड है। जब हम पंचेंद्रिय तीरंज कहते हैं तो असंगी भी पंचेंद्रिय तीरंज है और संगी भी पंचेंद्रिय तीरंज है, इसलिए वे तो उसमें है ही है। वैसे पंचेंद्रिय तीरंज लब्धिय पर्याप्तक में भी संगी असंगी दोनों ही होते हैं, इसलिए वो वहां आ गए। इसलिए इनमें भी मोहनीय का जघन्य अध्याच्छेद उक्त प्रमाण कहा है। अध्याच्छेद का अर्थ याद है ना, कितनी स्थिति, स्थिति कितनी बंधी है उसकी बात है, अकेले बंध की बात नहीं, कहीं कहीं तो सत्ता की, सत्ता में कितना है, बंध के काल में हो सकता है कि अन्यत्र भी हो सकता है, बंध की अपेक्षा नहीं लेना ऑलवेज। अब ये पहली पृथ्वी में वो असंगी उत्पन्न होते हैं, दूसरी पृथ्वी से नीचे तो नहीं उत्पन्न होंगे, तो वो नारकी तो पहले समय से ही संगी पंचेंद्रिय जैसा ही बंद करेगा, क्योंकि संगी में से ही आया है वहां पर। दूसरे से अंतिम नरक तक उत्पन्न होने वाला जीव कौन से पर्याय में से मरकर आया है? मनुष्य तीरंज, तीरंज में थे संगी पंचेंद्रिय तीरंज, तो उसका ऑलरेडी बंद अंत कोड़ाकोड़ी से ज्यादा ही है। तो यहां कहते दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक के नारकियों के मोनीय की जघन्य स्थिति अंत कोड़ाकोड़ी सागर होती है। ये संगी पंचेंद्रियों की जघन्य स्थिति इससे नीचे नहीं हो सकती है, एक्सेप्ट जब वो क्षपक श्रेणी चढ़ेगा, अन्यत्र भले वो मिथ्या दृष्टि हो, समय दृष्टि हो, मुनि भी हो, अंत कोड़ाकोड़ी स्थिति रहेगी ही रहेगी। इसी प्रकार ज्योतिषी देवों से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देव, उनमें भी इतनी तो स्थिति रहेगी ही, केवल भवनवासी और व्यंतरों में असंगी में से आए हुए जीव के वो हजार सागर में कुछ कम, वो जो हमने देखा था पल्ले का संख्यात्मक भाग, वो भी पहले समय में हो सकता है, असंगी में से मरकर आया है और विग्रह गति के पहले समय में। अब बाकी जो सभी देव है, वैक्रिय काय योगी, वैक्रिय काय योगी भी संगी पंचेंद्रिय हो गए ना ये, तो उनके भी अंत कोड़ाकोड़ी है। वैक्रिय मिश्र काय योगी, क्योंकि हमने वो जो देखा था पहले समय वाला, वहां तो मिश्र काय योग नहीं है, इसलिए वैक्रिय मिश्र, आप कहेंगे वैक्रिय मिश्र काय योग तो भवनवासी और व्यंतरों को भी होता है, और उनमें तो आपने वो हजार सागर में कुछ कम इतना घटित किया है, तो यहाँ वैक्रिक मिश्र में क्यों नहीं घटित होगा? तो वैक्रिक मिश्र होने के पहले जो मोड़ सहित आया है, कारमान काय योग अवस्था में है, उस समय उसको असंगी जैसा बंध है। जब वैक्रिक मिश्र हो जाता है तो संगी पंचेंद्रिय जैसा बंध होने लगता है। आहारक काय योगी, आहारक मिश्र काय योगी, ये तो मुनिराज है, रुजुगति आएगा, रुजुगति से आएगा तो उसको तो संगी पंचेंद्रिय जैसा बंध होगा। आहारक का योगी और आहारक मिश्र का योगी, ये मुनिराज के गुणस्थान है, तो इनमें तो कितनी स्थिति है, बंध की बात अकेले नहीं है, सत्ता में कितनी अभी स्थिति है, अंत कोड़ाकोड़ी सागर। अकषायी, अभी बात निकली थी ना, ग्यारहवा गुणस्थान है, उपशम श्रेणी चढ़कर पूरा वितराग हुआ है, फिर भी सत्ता में अंत कोड़ाकोड़ी सागर स्थिति है अभी। विभंग ज्ञानी, क्योंकि विभंग ज्ञानी क्यों लेना, वो संगी पंचेंद्रियों को ही होता है विभंग ज्ञान, भले नारकी हो, देव हो, मनुष्य हो या तिर्यंच हो। तो संगी पंचेंद्रिय में जितना अंतकोड़ा कोड़ी सागर स्थिति संभव है उतनी इनमें हो सकती है। परिहार विशुद्धि संयत ये छठा सातवां गुण स्थान है, तो स्थिति तो अंतकोड़ा कोड़ी होगी। यथाख्यात संयत ये कौन सा लेना है गुण स्थान? ग्यारहवां लेना। संयता संयत पांचवा गुण स्थान, यहां भी अंतकोड़ा कोड़ी है। पीतलेशा वाले, पद्मलेशा वाले, देखो पीत और पद्म ही लिया, कृष्ण नहीं लिया, कृष्ण नील कपोत नहीं लिया, क्यों? देखो ये तो एकेंद्रिय में भी होते हैं और एकेंद्रियों की स्थिति अभी जघन्य स्थिति अभी घटित करेंगे हम, वो बहुत कम हो जाती है, एक सागर से भी कम हो जाएगी। कौन? कृष्ण लेशा वाला? कोई भी सम्यक दृष्टि अंत कोड़ा कोड़ी सागर कर देता है। हाँ, जब वापस मिथ्या तो हाँ मिथ्या दृष्टि है, परंतु विभंग ज्ञानी में जघन्य कब पॉसिबल है? उत्कृष्ट कितनी है तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर हो सकती है। जघन्य कितनी होगी विभंग ज्ञानी के? अभी जो विभंग ज्ञानी औपशमिक सम्यक्तों के सन्मुख है, करण लब्धि में है, तो उसकी भी अंत कोड़ा कोड़ी हो जाएगी ना। विभंग ज्ञान रहते हुए उसकी करण लब्धि में वो घटते गए। हाँ आज समझ में आया। पीतलेशा और पद्मलेशा वाले लिए। देखो शुक्ल लेशा वाले को क्यों छोड़ा? क्योंकि शुक्ल लेशा में जघन्य स्थिति कितनी संभव है एक समय दसवें गुण स्थान में। अब पीत और पद्म वाले को तो श्रेणी नहीं चढ़ते, क्षपक श्रेणी, कोई भी श्रेणी नहीं चढ़ते, क्षपक की तो बात ही छोड़ो। तो इनमें कम से कम स्थिति कितनी होगी पीत और पद्म वालों को? अंत कोड़ा कोड़ी, क्योंकि ये संगी पंचेंद्री जीव है, पीत पद्म वाले है ना ये। वेदक सम्यक दृष्टि, अब वेदक सम्यक दृष्टि क्योंकि वो जो क्षपक श्रेणी वाला क्षायिक सम्यक्त्व में ही संभव है एक समय वाली बात, जब तक वेदक सम्यक दृष्टि है तो सातवें गुण स्थान तक ही होगा, तो उसकी भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति जघन्य में। जघन्य वेदक सम्यक दृष्टि में हमने उत्कृष्ट स्थिति देखी थी, याद है? वेदक सम्यक दृष्टि में मोनिय की उत्कृष्ट स्थिति कितनी देखी थी? हाँ हाँ, वो 32 आप वो प्रकृति की बात, स्थान समुद्र कीर्तन प्रकृति की बात याद है? कितनी स्थिति कितनी मैं पूछ रही, बहुत अच्छा। अंतर्मूर्त माइनस यानी कम करना किसमें से? 70 कोड़ा कोड़ी सागर, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति बांधी है और अंतर्मूर्त के पश्चात उसने वेदक सम्यक को प्राप्त किया। साधी मिथ्या हमने पढ़ा था ना उत्कृष्ट स्थिति में, थोड़ा याद करेंगे तो रिविजन हो जाएगी। यहां हम जघन्य देख रहे हैं। वेदक सम्यक दृष्टि, जब हम उत्कृष्ट स्थिति की बात जब कर रहे हैं तो वेदक सम्यक को प्राप्त करने के समय की बात है। हाँ, क्योंकि पहले उसने उत्कृष्ट बंध किया है मोहनीय का, कितना? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। अंतर्मूर्त के पश्चात वेदक सम्यक तो प्राप्त किया, तो पहले समय में स्थिति कितनी होगी? अंतर्मूर्त कम 70 कोड़ा कोड़ी सागर। अब उपशम सम्यक दृष्टि, यहां हम जघन्य बात कर रहे हैं। जघन्य कितनी देखी अभी? अंत कोड़ा कोड़ी सागर। उपशम सम्यक दृष्टि में कितनी होगी? अंत कोड़ा कोड़ी सागर। और उत्कृष्ट कितनी होगी उपशम सम्यक में? नहीं, वो भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर। उपशम सम्यक तो जब प्राप्त करता है तो स्थिति कांड घात वगैरह करके ही करेगा। सासादन सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि सासादन में आया है। तो उपशम सम्यक दृष्टि सासादन में आ गया है तो उसके भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर है, क्योंकि उपशम के काल में अंत कोड़ा कोड़ी हुआ था, वही जीव आया है नीचे। सम्यक मिथ्या दृष्टि उसमें भी, हाँ अंत कोड़ा कोड़ी जगन्य अनादिकालीन मिथ्यादृष्टि है। हाँ, उपशम सम्यक तो अभी किया नहीं है। हाँ, काल आया है ने, कितना काल बाकी है अभी उसके ऊपर निर्भर है। काल आया है ने, प्रायोग्य लब्धि में अंत कोड़ा कोड़ी हो जाता है। उसके पहले विशुद्धि लब्धि में भले कुछ जो कुछ यथा योग्य है, परंतु वो 70 कोड़ा कोड़ी चल रहा है तो उस समय उसके वो विशुद्धि लब्धि वाला अंतर्मूर्त जाएगा, तब उसको फिर बाद में। हाँ, उसके पहले 70 कोड़ा कोड़ी हो सकता है। उपशम सम्यक तो प्राप्त करने लायक कब कहलाएगा हम? जब वो प्रायोगिक लब्धि में आया है या करण लब्धि में चढ़ गया, तब हम कहेंगे उसको। तो जब पहला क्षोभम लब्धि है, फिर विशुद्धि लब्धि, दोनों एक समय में एक साथ है। वैसे तो हम कहते हैं ना, सभी लब्धि एक साथ चालू हो जाती है। वहाँ ऐसा है, गृहित का नहीं, ऐसा कथन है, जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर इतना, या असंगी और नीचे के जो स्थिति है, इतनी जिसकी स्थिति है, वो उपशम सम्यक तो प्राप्त करने के लायक नहीं है। एकेंद्रिय समान वो उपदेश नहीं देना, वो बात वो तो तीव्र मिथ्या दृष्टि की बात। हाँ, उस काल में, क्योंकि वो जो है ना, देखो यहाँ जो है वो समय समय वाली बात है। ऐसा कोई जीव है बीच में बांध ले, अभी हम देखते सम्यक से छूटकर मिथ्यात्व में जाए और इतना बंद करे, और हम जो जनरल बात करते कौन से जीव को देना उपदेश, जो जानना चाहता है उसको देना, वहां तो उसके कितने सागरों का बंद हो रहा है, वो तो दूसरे को तो कुछ आइडिया नहीं उसकी। वहां तो वो जीव कितना बाहर ग्रित मिथ्यात्व है, बहुत तीव्र विरोध है, ऐसा वाला जीव लेना है। सत्ता में तो होगी ना, अंतर्मूर्त कम या जितना कुछ कम उतना 70 कोड़ा कोड़ी वाला होगा उसका। फिर भी उसमें अभी उसके अनुभाग की अपेक्षा भी वहां बात करनी है। ऑफ कोर्स जितना तीव्र मिथ्या तो होगा तो उसका अनुभाग भी ज्यादा बंधा होगा उसका। फिर भी यहाँ हमको जो वहां आपने उसको मिथ्या उदय रूप कैसा है उसकी बात चल रही है वहां पर। तीव्र मिथ्यात्व का उदय जिसके है, क्षोभम लब्धि विशुद्धि लब्धि, वो अंतर अंतर्मूर्त वाले बात है। बिल्कुल, सत्ता में कितना भी हो उसके उदय की बात चलती है। अनुत्कृष्ट हो जाता है वो, और ये उत्कृष्ट हर समय नहीं चलता उसके भी। वो तो काल आएगा, अभी हम एक जीव की अपेक्षा काल का प्रकरण आएगा। उत्कृष्ट उत्कृष्ट बंध लगातार कितने समय तक कर सकता है, उसकी बात आएगी वहां पर। हाँ, वही तो बात है ना, कैपेबल है नहीं कब। अभी हम प्रायोगिक लब्धि होने के बाद वो अंत कोड़ा कोड़ी हो जाता है, उसके पहले भी विशुद्धि लब्धि के काल में भी उसका जो अनुत्कृष्ट हो ही जाता है, उस समय तो उत्कृष्ट बंध नहीं कर रहा है, नहीं तो वो तो उपदेश सुनने लायक है, उसके ऐसे जो विशुद्ध परिणाम वो भी नहीं होगी उस समय। सत्ता में कुछ भी हो उससे कुछ नहीं लेना देना, और बंध के काल में ही इतनी सत्ता में उत्कृष्ट हो सकती है। बंध का काल छोड़कर उसका होगा ही नहीं, क्योंकि बंध का काल बीत गया है तो उसमें से कम होने ही है, भले अंतर्मूर्त कम हुआ है जो कुछ कम, क्योंकि निषेक तो गल रहे ना। यदि इतना बंद नहीं हुआ हो, पहले बंद हुआ हो, तो वो बंद में से तो कितने ही गल जाते हैं, तो 70 कोड़ा कोड़ी एक 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 समय करके गल ही रहे हैं वो। फिर भी गल गए हैं, फिर भी उसका अनुभव कितना है, वो तो उदय रूप निषेक पर उसमें निर्भर है। देखो, वैकृत मिश्र का योग देव और नारकियों के होता है, और अभी अभी हमने देखा था देव और देव की बात नहीं, नारकियों में और देवों में लेना है तो भवनवासी और व्यंतर में। जघन्य में जघन्य स्थिति कितनी हो सकती मोहनीय की, तो हजार सागर में पल्ले का संख्यात भाग कम। वो किस अपेक्षा से, जो असंगी जीव, असंगी पंचेंद्रिय जीव मरकर देव या नरक में आया है उसकी बात है। तो उसकी बात कब संभव है देव और नारकी में, तो असंगी पंचेंद्रिय मरकर विग्रह गति के पहले समय में उसको इतना ही जघन्य बंध है। भले वो नारकी हुआ है अभी या देव हुआ है, फिर भी बंध एक समय के लिए असंगी जैसा है। और उस असंगी, पर्टिकुलर असंगी कि जिसकी सत्ता में भी स्थिति इतनी कम है, ऐसा जीव नारकी या देव होते हुए भी उसकी स्थिति कितनी है, तो हजार सागर में वो कम, पल्ले का संख्यात्वा भाग कम, संख्यात्वा। परंतु जब वो वैकृत मिश्र का योग हो जाता है तब उसका भी बंध, नया जो बंध होगा वो संगी पंचेंद्रिय जैसा होगा, नारकी जैसे होगा, देव जैसे होगा, क्योंकि उसके भी वैकृत मिश्र अवस्था शुरू हो गई। एक समय के लिए ही वो असंगी जैसा बंध हुआ था और तभी ये जघन्य उसकी स्थिति पॉसिबल है। हजार सागर जितने जब वो वैकृत मिश्र अवस्था प्राप्त हो जाती है तो उसको संगी पंचेंद्रिय जैसा बंध होने लगेगा, तब वो अंत कोड़ा कोड़ी हो सकता है। हमें कम से कम देखना है ना, कम से कम अंत कोड़ा कोड़ी सागर होगा। अभी विशेषार्थ, इसी का विशेषार्थ चलेगा। यहां जितनी मार्गणाएं गिनाई है उनमें स्थिति बंध और प्राक्तन सत्व दोनों लेना, नया बंध भी और सत्ता में पड़ा हुआ कर्म की स्थिति भी, अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण भी संभव ने भी लगाया, क्योंकि हम जघन्य देख रहे हैं। उत्कृष्ट तो हमने देखा था ना, सत्तर कोड़ा कोड़ी हो सकता है, ये भी लगाने से इतना हो सकता है। इनमें मोहनीय का जघन्य अध्याच्छेद उक्त प्रमाण कहा है। अब उत्कृष्ट के लिए ये लिस्ट इकट्ठा नहीं है, क्योंकि जघन्य में तो हम आहारक योगी, आहारक का मिश्र योगी वगैरह को लिए, पर आहारक का योग में उत्कृष्ट होगा तो भी वो अंत कोड़ा कोड़ी का ही होगा, क्योंकि हमने देखा था वो मिथ्यात्व में से वेदक समय दृष्टि होता है तो उसमें तो अंतर्मूर्त कम सत्तर कोड़ा कोड़ी लिया, परंतु ये आहार का योगी निराज वगैरह होते हैं तो उनके इतना लंबा वो सत्ता में नहीं पाया जाता। उपशम सम्यक तो प्राप्त करना है ना, वो करण लब्धि में से उपशम सम्यक तो में जाना, उसके पहले वाले जो प्रोसेसेस है वो सारे स्थिति कांडक घात होते हैं, और स्थिति कांडक घात करने के पश्चात, वो अंत कोड़ा कोड़ी होने के पश्चात ही उसको उपशम सम्यक की प्राप्ति की योग्यता यानी करण लब्धि की भी योग्यता होती है। हाँ, वेदक समय दृष्टि मिथ्यात्व में गया है कोई, या कोई सादी मिथ्या दृष्टि है, 28 की सत्ता वाला है और उसने 70 कोड़ा कोड़ी का बंध किया है और अंतर्मूर्त के पश्चात वो वेदक समय दृष्टि हुआ है, वहां उसको वो कांडक घात वगैरह बिना उसके किए भी वो हो सकता है, ये बात है। अब तीरियंचों की बात है, नारकियों की देखिए और नारकियों के समान अन्य कहां कहां है उसकी भी बात देखिए। तीरियंचों के मोहनीय की जघन्य स्थिति एक सागर के सात भागों में से पल्लोपम के असंख्यात वे भाग कम सात भाग प्रमाण है। अब ये कितना कम है क्या छोड़ दो, एक सागर कहना है तीरियंचो में, एक सागर क्यों, एकेंद्रीय भी तीरियंच है ना, तो एकेंद्रियों में मिथ्यात्व प्रकृति का बंध कितना है, उत्कृष्ट बंध एक सागर और जघन्य बंध एक सागर में पल्ले का असंख्यात्वा भाग कम, ये उसकी रेंज है जघन्य से उत्कृष्ट तक की। देखो एकेंद्रिय इतना ही बंध करते हैं और संगी पंचेंद्रिय सत्तर कोड़ा, और कम से कम भी करेंगे तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर करेंगे ना। संगी पंचेंद्रिय जीव है और मिथ्यात्व का बंध कर रहा है तो कितना करेगा, कम से कम अंत कोड़ा कोड़ी सागर सागर, और ये तो एक सागर से भी जो कुछ है उत्कृष्ट करेगा तो एक सागर, और जघन्य करेगा तो सागर में पल्ले का असंख्यातवा भाग कम। अब ये सागर के सात भाग करो और सात भाग में से सातों भाग लो, उसका अर्थ क्या हुआ? एक सागर। ये ऐसा लिखने की जरूरत क्या है? अभी हमने देखा था, क्योंकि यदि हमको ज्ञानावरणी की सत्ता, ये उसकी स्थिति कहनी होगी तो हम क्या कहेंगे? एक सागर के सात भागों में से तीन भाग, यानी तीन बटे सात या तीन सप्तमांश सागर, वो कहने के लिए यहां भी वही भाषा ये ली है। इसी प्रकार अब ये तीर्यंचों की जो जघन्य स्थिति बताई है, ऐसा ही कथन कहां कहां होगा? अन्य मार्गणा कौन सी? तो इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा एकेंद्रियों में, पांचों स्थावर काय, काय मार्गणा की अपेक्षा पांच स्थावर कायों में, और योग मार्गणा की अपेक्षा कहां कहां संभव है? तो औदारिक मिश्र काय योगी, क्योंकि एकेंद्रिय सारे उसमें पाए जाते हैं ना, कार्मण काय योगी, मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, क्योंकि मति ज्ञानी, मति अज्ञानी और श्रुता अज्ञानी उसमें भी एकेंद्रिय आ जाते हैं। असंयत कहने से पहला गुणस्थान, वो एकेंद्रिय जी उसमें भी संभव है। कृष्ण आदि तीन लेशा वाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंगी, ये असंगी कौन से लेने? इतना कम बंध वाले असंगी कौन से लेने हैं? हाँ, एकेंद्रिय, क्योंकि एकेंद्रिय भी असंगी है। संगी मार्गणा की अपेक्षा एकेंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक को हम असंगी कहेंगे। ये मार्गणा कौन सी है? पहले भी असंगी कहा था, नरक में जाने वाले, परंतु वहां असंगी पंचेंद्रिय समझना था, असंगी पंचेंद्रिय तीर्यंच ही हो गए वे। अब यहां जो असंगी कह रहे हैं वो तो एकेंद्रिय भी असंगी मार्गणा में आते हैं, और अनाहारक जीवों के कहना चाहिए, सभी विकलेंद्रिय जीवों के। अभी एकेंद्रिय की कितनी देखी? एक सागर में जो कुछ कम। सभी विकलेंद्रिय जीवों के कितनी है? तो 25 सागर में पल्ल्य का संख्यात्वा भाग कम, फिर हम बाद में पढ़ेंगे। विकलेंद्रिय में, द्विंद्रिय में कितने हैं? 25 सागर में पल्ल्य का संख्यात्वा भाग कम। तीन्द्रिय में 50 सागर में पल्ल्य का संख्यात्वा भाग कम। और चतुरिंद्रिय में 100 सागर में, हजार ने 100 सागर में पल्ल्य का संख्यात्वा भाग कम। अब इसको पढ़ेंगे। देखो, असंगी की बात हमने देखी ना, वो तो हजार सागर हो जाते। सभी विकलेंद्रिय जीवों के मोनीय की जघन्य स्थिति क्रम से ने द्वितीय और चतुरिंद्रिय की समझना। 25, 50 और 100 सागर के सात भागों में से पल्ल्योपम के संख्यात्वे भाग कम सात भाग प्रमाण है। त्रस लब्धि पर्याप्तकों के, द्विंद्रिय लब्धि पर्याप्तकों के समान जघन्य स्थिति जाननी चाहिए। अब ये जो हम 25 में से इतना कम करो वो देख रहे हैं ना, वो तो अपर्याप्तकों के इतनी कम हो जाती है। विशेषार्थ, एकेंद्रियों में मोनीय का जघन्य स्थिति सत्व पल्ल्य का असंख्यात्वा भाग कम एक सागर प्रमाण प्राप्त होता है, और एकेंद्रिय तीर्यंच ही होते हैं, इसलिए इनमें मोनीय का जघन्य अध्याच्छेद उक्त प्रमाण कहा है। यहां अन्य एकेंद्रिय आदि जितनी मार्गणाएं गिनाई है, उन मार्गणा वाले जीव भी एकेंद्रिय हो सकते हैं। अभी हमने जो ऊपर मार्गणा देखी ना, असंगी मार्गणा, अनाहारक, मिथ्यादृष्टि, कृष्ण लेशा वाले वगैरह वगैरह, वे भी एकेंद्रिय हो सकते हैं। इसलिए एकेंद्रिय की ही अपेक्षा उनमें भी इतना कम स्थिति सत्व जो है, स्थिति विभक्ति देखी थी। जघन्य अध्याच्छेद, इसलिए उनका कथन उक्त प्रमाण कहा है। इसी प्रकार द्विंद्रिय आदि के जघन्य स्थिति सत्व को ध्यान में रखकर उनमें मोनीय का जघन्य अध्याच्छेद पल्ल्य का संख्यात्वा भाग कम क्रम से 25, 50 और 100 सागर कहा है, जो अभी ऊपर पढ़ा उसी का विशेषार्थ दिया था। अभी यहाँ इंद्रिय का योग वगैरह मार्गणा बताइए, अभी वेद मार्गणा की बात कर रहे हैं। अभी किसकी बात चल रही? जघन्य अध्याच्छेद यानी सत्ता में पड़े हुए कर्मों की बात चल रही है। कितना बंद हो रहा है उसकी अपेक्षा नहीं लेना है, जहां अपेक्षा बनती वहां उसकी भी अपेक्षा ले सकते हैं, परंतु यहां मोहनी की स्थिति चल रही है जघन्य। जब मोहनी की कहते हैं तब किसी विशिष्ट कर्म की नहीं लेना, जिस किसी कर्म की अधिक से अधिक होगी उसको ले लेना। तो वेद मार्गणा के अनुवाद से स्त्री वेदी और नपुसक वेदी जीवों के मोहनी कर्म की जघन्य स्थिति संख्यात 1000 वर्ष है। जब स्त्री वेदी और नपुसक वेदी की मोहनी की स्थिति कहते हैं तो ये कौन से कर्म की होगी? यहाँ जघन्य में जघन्य जब हम स्त्री वेदी की जघन्य स्थिति कहते हैं तो उसमें अभी अपना प्रकरण उत्तर प्रकृति का नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सोचेंगे। हाँ संजवलन, स्त्री वेद का उदय चल रहा है। हाँ हाँ, तो मेरा प्रश्न क्या है, यहाँ जब कहा आप जो स्थिति गिन रहे हैं कितने कौन कौन से कर्म बाकी है? मोहनीय कर्म समझ गया मुझे, प्रश्न ही है मोहनीय की कौन सी उत्तर प्रकृतियां लेंगे हम स्त्री वेदी के जघन्य स्थिति में, जघन्य अध्याच्छेद में। मिथ्या तो रहेगा क्या जब ये स्त्री वेद? हाँ बोल। क्षपक श्रेणी में जब स्त्री वेद का उदय चल रहा है तो स्त्री वेद के उदय का अंतिम समय ले लो, यानी स्त्री वेद तो है, स्त्री वेद है, पुरुष वेद भी है सत्ता में, और संजवलन भी है चारों, और अभी नौ कषाय का भी क्षपणा नहीं हुई तो सत्ता में तो वे भी है। तो हमें तो थोड़ा आइडिया आ गया ना कि कौन से पोजिशन पर क्या बात कर रहे हैं। तो यहाँ जब स्त्री वेद के जीव में, स्त्री वेदी जीव में जघन्य जब हम घटित कर रहे हैं तो यहाँ मिथ्यात्व की सत्ता होगी कि नहीं होगी? हाँ। अंतिम समय नहीं लेना भैया, सवेद का। हाँ वेद का भी, वो भी स्त्री वेद का, स्त्री वेद के उदय वाला का अंतिम समय लेना। हाँ। और नपुसक वेदी, नपुसक वेद का अंतिम समय लेना, यानी एक क्षपक श्रेणी वाला लेना है। उपशम श्रेणी वाला लेंगे तो वहां तो अंत कोड़ा कोड़ी तो है ही, सभी कर्म पड़े हैं। तो वहां पर उस पॉइंट पर यानी अभी अपगत वेदी होगा नेक्स्ट समय में, तो वहां पर उसकी स्थिति कितनी पड़ी है? तो संख्यात 1000 वर्ष, वर्षों की बात है, संख्यात 1000, अभी सागरों की वगैरह बात नहीं चल रही है, संख्यात 1000 वर्ष। पुरुष वेदी जीवों के मोहनी की जघन्य स्थिति, पुरुष वेद यानी जब अभी पुरुष वेद का उदय चल रहा है और उसका अंतिम पॉइंट लेना, तब मोहनी की जघन्य स्थिति संख्यात वर्ष है। अभी उसमें से और कुछ घटाना तो संख्यात वर्ष कह दिया। तथा क्रोधी मानी और माया कषाय वाले जीवों के मोहनी की जघन्य स्थिति क्रम से परिपूर्ण 4, 2 और 1 वर्ष है। क्रोधी जीव की जब कहेंगे तो क्रोध के उदय सहित चढ़ने वाला जीव के अंतिम समय में लेना, तो तब उसकी तभी उसको क्रोधी कहेंगे, सत्ता में पड़े है उसकी बात नहीं है। क्रोधी कब कहेंगे? क्रोध का उदय चल रहा है तब क्रोधी कहेंगे, तब उसके कितनी है? 4 वर्ष स्थिति है। और मानी यानी मान के उदय का अंतिम समय 2 वर्ष, और माया के उदय का अंतिम समय 1 वर्ष। अब मैं पूछूं लोभ के उदय का अंतिम समय होगा तो कितने वर्ष होगा? 1 समय, क्योंकि 10वें गुण स्थान में है। अब यही बात, ये जो 1 वर्ष है, अब सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत ये कहां तक होते हैं? 9वें के अंत में, जीवों के मौनीय कर्म की जघन्य स्थिति अंतर्मूर्त है। इसका अर्थ है नौवे के अंत समय में मौनीय की स्थिति कितनी है? अंतर्मूर्त। हाँ, क्योंकि वहां तक लोभ का बंध भी है। बताई थी मैंने, छह नौकशा है, एक पुरुष वेद है, पर ये सब सत्ता में पड़े ना, और चार संज्वलन है। क्योंकि स्त्री वेदी अभी हम कहते हैं तो वहां कितनी प्रकृतियां हैं? स्त्री वेदी है तब तक प्रकृतियां कितनी हैं? स्त्री वेदी है तो स्त्री वेद की भी एक समय वाली है ना। हाँ, तो कितनी प्रकृतियां हैं टोटल? 12। 13 में से एक नपुंसक वेद का क्षय करके 12 वाला हुआ है, और नपुंसक वेदी भी कहते तो भी 12 वाला है, क्योंकि उसने स्त्री वेद की क्षपणा एक समय पूर्व की है, वो भी 12 वाला है। तो ऐसे जीव के कितनी है? तो संख्या 1000 वर्ष। सामायिक और क्षेत्रोपस्थान उनकी हमने अंतर्मूर्त देखी। विशेषार्थ, उक्त तीन वेद वाले और क्रोधादि तीन कषाय वाले जीवों के मुनि की यह स्थिति क्षपक श्रेणी में अपने अपने उदय के अंतिम समय में प्राप्त होती है। क्योंकि स्त्री वेदी कहेंगे तो पहला गुणस्थान वाला भी स्त्री वेदी होता है। हमें तो जघन्य स्थिति कहाँ घटित होती है? स्त्री वेद का उदय रहते हुए जघन्य स्थिति कहाँ है? तो क्षपक श्रेणी में स्त्री वेद के उदय सहित चढ़ने वाले जीव के, स्त्री वेद का उदय कहो या क्षपणा कहो, उसका अंतिम समय, सवेद भाग का अंतिम समय, वहां कितनी है उसकी? तो संख्या 1000 वर्ष मोहनीय की स्थिति पड़ी है। इसलिए इन मार्गणाओं में मोहनीय का जघन्य अध्याच्छेद उक्त प्रमाण कहा है। इस प्रकार अध्याच्छेद समाप्त हुआ। हमने पहले जो अनुयोग द्वारों के नाम देखे थे उसमें से जो अलग अलग, जो क्योंकि अध्याच्छेद को उन्होंने पहले ही बता दिया और उसका कारण भी बताया कि उत्कृष्ट और जघन्य अध्याच्छेद पता हो तो बाकी सभी घटित हो गए, वो समझने में सुलभ होगा। तो अभी जो हमने अनुयोग द्वारों के नाम देखे थे, 24 देखे और फिर और तीन उसमें बताए थे, 27, उसकी चर्चा अब शुरू होगी। तो कहते हैं सर्व विभक्ति और नौ सर्व विभक्ति अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। ओघ में हमने कितने देखे थे? अधिक से अधिक स्थितियां उदय का समय से लेकर 70 कोड़ाकोड़ी सागर तक, क्योंकि अभी बंद हो रहा है 70 कोड़ाकोड़ी का, उसमें तो आबादा छोड़कर निषेक रचना हुए, पर ऑलरेडी सत्ता में पड़े हैं ना, उन 7000 वर्षों के समयों में पूर्व में बंधे हुए निषेक वहां पर है कि नहीं है? तो यहां हम सत्ता की बात करेंगे, अकेले बंद की बात नहीं लेनी है। सत्ता में निषेक कहां से पड़े? वर्तमान समय से लेकर 70 कोड़ाकोड़ी का अंतिम समय तक, ये जब उत्कृष्ट बंद हो रहा है उस समय ऐसी पोजीशन हो सकती है। तो ये सभी निषेक है, सभी विभक्ति है, तो उसको कहेंगे सर्व विभक्ति, और उसमें से कुछ कम हो जाएगी तो हम कहेंगे नो सर्व विभक्ति। तो कहते आदेश में उनमें से ओघ निर्देश की अपेक्षा, ओघ की पहले बात करेंगे, सर्वस्थितियां ने सभी निषेक, अलग अलग स्थितियों गिनेंगे तो कम हो गए तो भी वो असर्व नौ सर्व कहेंगे। हाँ, जब ये बंद हो गया उत्कृष्ट और कुछ काल बीत गया, मान लेते 10 समय बीत गए तो उसमें तो 10 निषेक हट गए ना उसमें से, और नया बंदे इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, और जो ऑलरेडी बंदा था उसमें से एक एक निषेक तो हर समय गलता ही है, तो उसको हम नौ सर्व कहेंगे। तो कहते सभी निषेक, सर्व स्थितियां सर्व विभक्ति है, और सर्व स्थितियां नहीं होगी एक एक समय से लेकर, वर्तमान एक समय से लेकर 70 कोड़ाकोड़ी सागर तक के सभी निषेक वहां मौजूद है तो उसको हम कहेंगे सर्व विभक्ति, और सभी नहीं है तो कहेंगे नो सर्व विभक्ति। तो देखिए सर्व स्थितियां सर्व विभक्ति है और उससे न्यून नो सर्व विभक्ति है। हाँ वर्तमान जब एक समय ने एक ही समय के लिए उत्कृष्ट बंध जब तक रहेगा, जितने समय तक उत्कृष्ट बंध होगा उतने समय तक सर्वस्थितियां होगी। मैं क्या कह रही हूँ, केवल एक समय में ही उत्कृष्ट बंध होता है क्या? लगातार कुछ समयों तक होगा? जिस समय जब तक उत्कृष्ट बंध हो रहा है तब तक तो सर्वस्थितियां पाई जाएगी। पहले अनुत्कृष्ट बंध होने लगेगा तो नो सर्व विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि उसके साथ तो एक समय गल नहीं जाएगा। नया बंध 70 का ही अगर होगा तो इसे मान लेते, लगातार दो समय तक 70 कोड़ाकोड़ी बंधी तो दोनों ही समय के लिए सर्वस्थितियां पाई जाएगी। और अभी उत्कृष्ट बंध होने के पश्चात 10 समय तक उसको उत्कृष्ट बंध नहीं हुआ है, हाँ तो उसके 10 माइनस हो गए ना उसमें से, तो नौ सर्व विभक्तियां हो। हाँ बोल, आबादा है मगर सत्ता में पड़ी है, ये सत्ता की गिननी है सब। आप नहीं समझे, आबादा हो या ना हो काल में घट गया कि नहीं घट गया? 7000 वर्ष में से एक समय कम हुआ कि नहीं हुआ? ये बंद का समय है और ये आबादा हम थोड़े से समय गिनेंगे, यहाँ 5 समय की आबादा समझो और उसमें मान लेते 15 समय की उसने, यानी टोटल 20 समय बांधी है, टोटल 20 समय बांधा है ना उसका। अभी एक समय चला गया तो 20 समयों में से एक समय घट गया कि नहीं घट गया? देखो सत्ता में से भी एक कम हो गई। ये बंधने अकेले बंधी वाली सत्ता नहीं लेना है, आबाधा में 5 पूर्वबद्ध 5 यहाँ पड़े हैं, उसमें से एक कम हुआ और नया बंध 15 ये 20 वाला नहीं, 20 वाला नहीं हुआ था, 19 वाला हुआ, 15 वाला हुआ, जो कुछ हुआ वो समझ लो। लगातार पंद्रह प्लस 20 बनता रहे मान लेते कितने समय तक, वो तो काल में हम देखेंगे कितने समय तक बन सकता है। हाँ उदाहरण के लिए 10 समय तक ले लो ना, हमें क्या जाता है। तो 10 समय तक वो उत्कृष्ट बंध है तो उसकी स्थिति भी, क्योंकि सत्ता की स्थिति हम देखते हैं यहाँ पर, बंधने की स्थिति नहीं लेनी है। पहले समय से जहाँ इसका आबादा है, विशिष्ट समय में बंधी हुई का आबादा चल रहा है, उस समय सत्ता के निषेक वहां पड़े हैं और इस वर्तमान समय से लेकर 70 कोड़ाकोड़ी तक के निषेक हम सभी है मौजूद, तो सर्व स्थितियां कहेंगे, सर्व विभक्ति कहेंगे और उसमें से कम हो गई कुछ तो हम कहेंगे नो सर्व है। हाँ आबाधा काल इसका चल रहा है, एक समय के बंधने वाले का, उस समय दूसरे पहले बंधे हुए का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कि 7000 वर्ष तक मिथ्यात्व का उदय ही नहीं है तो अच्छा हो जाता ना। पहली हर समय जो बनता आया है उसकी आबादा हर एक की कमती कमती होते होते किसी ना किसी का उदय तो चल ही रहा है। हम देखते ना एक समय में बंधे हुए का डिस्ट्रीब्यूशन 70 थोड़ा कोड़ी सागर तक हुआ, परंतु ऐसे हर समय बन रहा है। तो जिनकी आबादा पूरी हो चुकी है उनका तो अभी बंद चल रहा है, सॉरी उदय चल रहा है। ऐसे बहुत सारे हैं ना जिनकी आबादा कब की पूरी हो गई है। ये सत्ता में पड़े हुए कर्मों की ही बात चल रही है। कभी कभी बंध बहुत बड़ा है तो बंध के समय वाली बात करेंगे, बंध के काल में कहेंगे, अकेले बंधने वाले के निषेकों की बात है ही नहीं है। बंध के काल में भी जो बंधा है वो सत्ता में ही मिल जाता है ना, सत्ता के निषेकों के साथ वे भी मिल जाते हैं। तो हमेशा सत्ता में कितने पड़े रहेंगे, वर्तमान से लेकर जितना उत्कृष्ट। हाँ बंध ज्यादा होगा तो बंध जितने होंगे, बंध कम होगा तो ऑलरेडी पूर्वबद्ध कर्मों जितना होगा। देखो ये हम फिर पढ़ते, सर्व विभक्ति और नो सर्व विभक्ति। अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ निर्देश की अपेक्षा सर्वस्थितियाँ सर्वविभक्ति है। तो सर्वविभक्ति कब होगी? जो संगी पंचेंद्रिय जीव है और उत्कृष्ट बंध कर रहा है उसके बंध के काल में सर्वविभक्ति होगी, और उससे न्यून नो सर्वविभक्ति है, कम है कुछ। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ना करना, उसको जानकर कथन करना चाहिए। जानकर ने मार्गणाओं में जानकर कथन करना चाहिए। यहां तो ओक की बात बता दी, मार्गणाओं में भी ऐसा ही है। जिस मार्गणा में जितनी है उस मार्गणा की अपेक्षा सर्व विभक्ति। अब नरक में उत्कृष्ट कितना हो सकता है बंद? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो वर्तमान समय से लेकर 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की सभी स्थितियां है तो सर्वस्थिति कहेंगे। नहीं, एकेंद्रिय में भी अधिक से अधिक विभक्ति कितनी हो सकती है? जो पंचेंद्रिय में से मरकर आया है वो सत्ता के लिए ना, उसमें जो उत्कृष्ट पॉसिबल है। अरविंद भी हंसते है कि एक की अपेक्षा ले लो तो दूसरे। एक सागर तो नया बंद है, वहां कम स्थिति वाला है। जहां जो एक इंद्रियों में लगातार बहुत काल तक है उस जीव के वो हत समुत्पत्तिक होकर उसकी वो सत्ता घट जाती है। नहीं, एक इंद्रियों में आया हुआ देखो, निकालना एक इंद्रियों की उत्कृष्ट कितनी है देखो, निकालो अध्याचेद, उत्कृष्ट अध्याचेद एक इंद्रियों में। हाँ, क्योंकि देवों में से आया था है ना, बादर एक इंद्रिय पर्याप्तों में, वो भी कौन कौन सा लिया था हमने? बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादर जल का एक पर्याप्त, और प्रत्येक वनस्पति पर्याप्त। इनमें कितना है एक समय कम? 70 कोड़ा कोड़ी सागर, वो उसकी सर्वस्थिति कहेंगे। हाँ, 11 पेज, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति का बंद करके दूसरे समय में मरकर एक इंद्रिय में आया है। हाँ बिल्कुल, पक्का करेंगे ना हम। हाँ देखो, यह अकेले बंद की बात नहीं। हम और डिटेल में जाएंगे, वो तो ज्यादा समझेंगे, हमें ज्यादा जानते हैं ना, इसलिए हमारा कंफ्यूजन ज्यादा होता है। वो लोग जल्दी कैचअप करते हैं। हम कहते हैं ना, जो कोरी पार्टी है तो जल्दी सही हो जाता है। लक्ष्मी बहन, नहीं समझ में आया तो पूछना। हाँ, और क्या है, ये तो बहुत सारी बातें तो हम भूल जाते हैं, और फिर एक अपेक्षा लेते ख्याल में तो दूसरी छूट जाती है। यानी हमारे जैसे उनका भी होता है, तो आप चिंता मत करना। और वो प्रश्न पूछते तो अपने कहां क्या छूट जाता है वो ख्याल में आता है ना अपना। भले कोई प्रश्न पूछे और गलत भी हो जाए तो अच्छा है, पक्का हो जाता है अपना। तो यहाँ कहते हैं जिस मार्गणा में जो अभी हमने देखे थे उत्कृष्ट जहां जितना हो सकता है, उत्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट अध्याचेद जिसको कहा है, जिसमें पंचेंद्रिय जीव है वहां उत्कृष्ट अध्याचेद कितना हो सकता है ऐसा देखा है। एक इंद्रिय में कितना हो सकता है उसको भी देखा है। ऐसे अलग अलग जीवों में मार्गणा में जितना जहां उत्कृष्ट अध्याचेद है उसको वहां समझना। सभी है स्थितियां तो उसको सर्वस्थिति कहेंगे, और कम है न्यून है तो आदेश की, यानी मार्गणा की अपेक्षा सर्वस्थिति और मार्गणा की अपेक्षा नो सर्वस्थिति। अब आगे का प्रकरण, ये इतने ही है, ये तो अनुगमित नहीं है, सर्व और नो सर्व। उसके बाद क्या है? उत्कृष्ट विभक्ति और अनुत्कृष्ट विभक्ति। अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ निर्देश की अपेक्षा सबसे उत्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट विभक्ति है, और न्यून स्थिति अनुत्कृष्ट विभक्ति है। ये सर्व में और उत्कृष्ट में क्या अंतर है? देखो 70 कोड़ा कोड़ी तक के एक एक समय के सभी है तो हमने कहे सर्व है, बराबर। और सभी उत्कृष्ट की भी संख्या उतनी ही है, 70 कोड़ा कोड़ी के समय में जितने, तो हम कहेंगे वो उत्कृष्ट है। वो लास्ट वाला है वो उत्कृष्ट अद्धा छेद होगा। यहां तो हम उत्कृष्ट स्थिति कह रहे हैं, उत्कृष्ट विभक्ति स्थिति भी नहीं, उत्कृष्ट स्थिति कहेंगे तो अद्धा छेद होगा। सर्व विभक्ति कहेंगे सब में 70 कोड़ा कोड़ी को ही लेना है। देखो उत्कृष्ट अद्धा छेद कितना है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। सर्व विभक्ति यानी सभी है कि नहीं, तो हाँ सभी है, वो सभी है कि नहीं इतना ही लेना, वो कितनी है नहीं पूछा है। तो 70 कोड़ा कोड़ी की सभी है तो मैंने उसको सर्व विभक्ति कहा। अब है उत्कृष्ट विभक्ति यानी 1, 2, 3, 4 करके कितनी है अभी, तो 70 कोड़ा कोड़ी मैक्सिमम है उसको उत्कृष्ट विभक्ति कहेंगे। तीनों में काल की अपेक्षा देखेंगे तो समान ही है, फिर भी नाम ये अलग अलग है और उसका प्रकरण भी अलग अलग है, अलग अनियोग द्वार है ना ये, आगे विशेषार्थ में उसको और खुलासा करेंगे, अभी तो पढ़ेंगे हम इसको। देखो उत्कृष्ट विभक्ति और अनुत्कृष्ट विभक्ति अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ निर्देश की अपेक्षा सबसे उत्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट विभक्ति है और उससे न्यून स्थिति अनुत्कृष्ट विभक्ति है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक कथन करना चाहिए, यानी हर एक मार्गणा में जहां जो पॉसिबल है उसको वहां लेना चाहिए। अब कहते हैं जघन्य, ये तो उत्कृष्ट विभक्ति हुई, अब जघन्य विभक्ति। जघन्य विभक्ति और अजघन्य विभक्ति अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है। हमने देखा उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ निर्देश की अपेक्षा सबसे जघन्य स्थिति विभक्ति है और उससे ऊपर की सब स्थितियां अजघन्य स्थिति विभक्ति है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए। हम विशेषार्थ पढ़ेंगे ना और शंका समाधान, ये और क्लियर होगा, पढ़े हम इसको पढ़ लेते हैं। शंका, सर्व स्थिति और अद्धा छेद में कही गई उत्कृष्ट स्थिति में क्या भेद है? उत्कृष्ट विभक्ति नहीं कहा, उत्कृष्ट स्थिति कहा है यहाँ पर, जिसको हमने पहले प्रकरण में उत्कृष्ट अद्धा छेद कहा था। 70 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट अद्धा छेद कब होता है? ये संगी पंचेंद्रिय जो मिथ्या दृष्टि वो बंद के काल में उसको इतनी स्थिति में पड़े हुए जो उसका अद्धा छेद कितना है, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का है। वर्तमान समय को गिनकर हो सभी है, क्योंकि पूर्व में बंधे हुए भी निषेक वहां पड़े हैं, तो अभी वर्तमान में बंधा है तो उसका जो अंतिम निषेक है वो जीव के सत्ता में कितने काल तक रहने की योग्यता है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो अंतिम निषेक की जो स्थिति है वही उत्कृष्ट अद्धा छेद है, क्योंकि एक समय में अनंत परमाणु बंधे हैं और हर एक निषेक की स्थिति अलग अलग है। किसी की 7000 वर्ष और एक समय, 7000 वर्ष दो समय, इस तरह से एक एक समय से बढ़ते हुए। तो हम उत्कृष्ट अद्धा छेद गिनते हैं तब किसका कहते हैं? अंत में जो निषेक रचना हुई है, अंतिम निषेक में जो परमाणु है उनकी स्थिति कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर, उसको उत्कृष्ट अद्धा छेद कहा है। तो यहां वही बात पूछ रहे हैं, सर्व स्थिति में और उत्कृष्ट अद्धा छेद में क्या भेद है? तो अंतिम निषेक का जो काल है वह उत्कृष्ट अद्धा छेद में कही गई उत्कृष्ट स्थिति है। अंतिम निषेक का काल वो कितने काल तक रहेगा जीव के साथ में? 70 कोड़ा कोड़ी सागर, उसको उत्कृष्ट अद्धा छेद कहो या अद्धा छेद की उत्कृष्ट स्थिति कहो। तथा वहां पर रहने वाले संपूर्ण निषेकों का जो समूह है वह सर्वस्थिति है। देखो अभी वर्तमान समय में बंद हुआ है, 7000 वर्ष के बाद से लेकर अंतिम समय तक इतनी सारी वहां स्थितियां बनी है, और पूर्व में बंदी हुई तो वर्तमान समय से 7000 वर्ष तक और ऊपर भी सभी जगह पड़ी है। तो अभी हम तो सत्ता की अपेक्षा ही बात करते हैं, कितनी स्थितियां है पड़ी हुई वर्तमान समय से लेकर 70 कोड़ाकोड़ी सागर के अंतिम समय तक प्रत्येक समय में एक एक निषेक है, तो इतनी स्थितियां है, तो सभी है, तो हम कहेंगे सर्वस्थिति। और अध्याच्छेद किसका कहा? जब उत्कृष्ट बंद हुआ था तो अंतिम निषेक की जो काल है उसका उदय कब होगा? तो 70 कोड़ाकोड़ी, अभी वर्तमान योग्यता कितनी है, 70 कोड़ाकोड़ी सागर वर्ष होने पर उसका उदय हो, ऐसी उसमें योग्यता पड़ी है अभी वर्तमान में। तो ये समाधान फिर पढ़ते हैं। अंतिम निषेक का जो काल है वह उत्कृष्ट अध्याच्छेद में कही गई उत्कृष्ट स्थिति है, तथा वहां पर रहने वाले संपूर्ण निषेकों का जो समूह है वह सर्वस्थिति है, सभी निषेकों का समूह। उसमें सभी निषेक है इतना ही देखा हमने, तो सर्व विभक्ति कह दिया उसको। इसलिए इन दोनों में भेद है। शंका, पहले तो सर्व विभक्ति और नौ सर्व विभक्ति किसको कहना वो हुआ, फिर उत्कृष्ट विभक्ति और उत्कृष्ट अध्याच्छेद में क्या भेद है, प्रश्न समझ में? देखो ये हमने अनुगम, ये 19 नंबर का जो अनुगम देखा था, उत्कृष्ट विभक्ति और अनुत्कृष्ट विभक्ति, लेफ्ट साइड के पेज में 14 नंबर के पेज में बीच में 19 नंबर का पॉइंट जो देखा था, तो अभी पूछ रहे कि उत्कृष्ट विभक्ति और उत्कृष्ट अध्याच्छेद में क्या अंतर है, उसका समाधान। अंतिम निषेक के काल को उत्कृष्ट अध्याच्छेद कहते हैं, जो अभी हम ऊपर देख आए हैं। उत्कृष्ट बंद जब हुआ था तो अंतिम निषेक का जो काल है उसको उत्कृष्ट अध्याच्छेद कहा था, और समस्त निषेकों के या समस्त निषेकों के प्रदेशों के काल को उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति कहते हैं। इसलिए इन दोनों में भी भेद है, यानी समस्त निषेकों के काल को उत्कृष्ट विभक्ति कही, समस्त यानी सभी निषेक, एक काल यानी उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति है। लास्ट वाला तो उत्कृष्ट अध्याच्छेद हुआ, सभी स्थितियों के निषेक पाए जाते, सभी स्थितियों के निषेक है, एक समय वाला निषेक है, दो समय वाला निषेक है, 70 कोड़ाकोड़ी वाला भी है। पहले तो हमने कहा सर्व विभक्तियां है, सर्व स्थितियां है, यानी सर्व निषेक है, ये तो सर्व स्थिति हो गई, और उत्कृष्ट स्थिति ने जितने मैक्सिमम पॉसिबल होने चाहिए एक 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 बढ़ते हुए वो सारे उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति कहे, वो और विशेषार्थ में देखेंगे हम। ऐसा होते हुए सर्व विभक्ति और उत्कृष्ट विभक्ति इन दोनों में भेद नहीं है, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। जब हमने कहे सर्व विभक्ति यानी कितने, पहले से लेकर 70 कोड़ाकोड़ी सागर तक की सभी निषेक है, ये सर्व विभक्ति हुई, और उत्कृष्ट विभक्ति में क्या, वही 70 कोड़ाकोड़ी सागर के जितने समय है उतनी स्थितियां है उतने निषेक है, उत्कृष्ट पॉसिबल है, ये उत्कृष्ट विभक्ति हुई। तो दोनों में समान ही है ना, तो क्या असमानता है उसको बताते हैं। ये नए विशेष की अपेक्षा उन दोनों में भी कथनचित भेद पाया जाता है, कथन की अपेक्षा भेद है तो उतने ही। अभी वो 70 कोड़ाकोड़ी को भूल जाओ, हम मान लेते वहां 100,000 निषेक है, उत्कृष्ट स्थिति 100,000 है, तो वर्तमान समय से लेकर 100,000 समय ही हम गिनेंगे, वर्ष को भूल जाओ, आपको 70 समय गिना है, अच्छा 70 समय गिनेंगे हम, तो 70 समय तक के सभी निषेक है तो हम कहेंगे सर्व स्थितियां हैं, और 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते 70 है, तो 70 है ये उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति हुई। सभी है, देखो 70 है, उत्कृष्ट कितनी हो सकती, 70, तो 70 के 70 है, तो सभी है, हमें कितने ही नहीं गिना, सभी है तो सर्व स्थिति विभक्ति हुई, और मैक्सिमम पॉसिबल कितनी, 70 है तो उत्कृष्ट हुई, 70 के बदले 60 है तो अनुत्कृष्ट हो जाएगी, उसी को अनुत्कृष्ट को हम नो सर्व कहेंगे, ख्याल है ना। तो यहाँ क्या कहते हैं, नए की अपेक्षा उसमें भेद है। वह इस प्रकार है, उत्कृष्ट विभक्ति समुदाय प्रधान होती है और सर्व विभक्ति अवयव प्रधान होती है, विशेषार्थ। अब ये जो तीन शब्द आए हैं उसका फिर वहां पोह करेंगे। उत्कृष्ट अध्याच्छेद, सर्व स्थिति विभक्ति और उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति, ये शब्द प्रयोग में आते हैं। इतना ही नहीं, इन नाम वाले स्वतंत्र अधिकार भी है, क्योंकि हमने देखे अनुगम अनुयोग द्वार अलग अलग है सबके, इसलिए इनमें क्या भेद है यही यहां बतलाया है। खुलासा इस प्रकार है, मान लो किसी जीव ने मिथ्यात्व का 70 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बंध किया। ऐसी अवस्था में, यानी जिस काल में बंद कर रहा है उस समय में, 70 कोड़ाकोड़ी सागर के अंतिम समय में स्थित जो निषेक है उसका उत्कृष्ट अध्याच्छेद 70 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण हुआ, ये उसका अध्याच्छेद हुआ। उन निषेकों का जो काल बंधा है उसको उत्कृष्ट अध्याच्छेद कहा है। वो कब उदय योग्य है, तो 70 कोड़ाकोड़ी सागर के बाद, बाद है ना उस समय, क्योंकि इतने काल तक इसके सत्ता में रहने की योग्यता है। योग्यता बताइए, उन परमाणुओं का क्या होगा, वो तो स्थिति कांडक होगा, क्षय होगा, उसकी बात नहीं कर रहे यहाँ पर, उसकी योग्यता इतने काल तक रहने की है। यह तो उत्कृष्ट अध्याच्छेद का उदाहरण है, तथा इस उत्कृष्ट स्थिति बंध के होने पर, यानी जिस समय उत्कृष्ट स्थिति बंध हो रहा है उस समय, जो प्रथम निषेक से लेकर अंतिम निषेक तक निषेक रचना होती है, ये सत्ता की निषेक रचना लेना, बंद की नहीं, ये क्या डिफरेंस होते हैं क्या सत्ता के और बंद के? देखो, सत्ता में जो निषेक पड़े हैं वर्तमान समय से लेकर कितने जितने हो, ये सत्ता के निषेक है। सत्ता के निषेक में आबादा कितनी होगी? मैं सत्ता के निषेकों की बात पूछे, सत्ता का निषेक है वर्तमान समय से है, उसमें आबादा का सवाल नहीं है। आबादा तो बंद के काल में होती है, बंधने वाले की आबादा होती है। अब उसी, अभी इस वर्तमान समय में किसी ने बंद किया तो उसने ये निषेक रचना उसकी हुई, परंतु इसको हम इसी में मिला देंगे, बंद हुआ है ने कुछ अलग ऐसे उसकी निषेक रचना नहीं है, तो ये प्रत्येक निषेक में यहाँ ये मिल गए। तो बंद के समय कितना होता है, मान लेते बंद ज्यादा है सत्ता से, तो बंद के उत्कृष्ट बंद हुआ है उस समय यहाँ तक रचना हो जाएगी ना, इसकी स्थिति इतनी ही थी और बंद उत्कृष्ट हो रहा है, तो बंद के समय में क्या पोजिशन है, ये यहाँ तक के तो निषेक इसमें मिल जाएंगे और ऊपर के यहाँ दिखाएंगे हम, ये बंद के समय में होने वाली निषेक रचना है। तो निषेक कितने हैं, वर्तमान समय से लेकर अंतिम समय तक, 70 कोड़ाकोड़ी सागर के अंतिम समय तक सभी निषेक है, सत्ता के लेना यहाँ पर। तो यहाँ कहते हैं उत्कृष्ट स्थिति बंद के होने पर जो प्रथम निषेक से लेकर अंतिम निषेक तक निषेक रचना होती है वह सर्वस्थिति विभक्ति है, सत्ता की। यह आगे लिखा है, यहां सत्ता का प्रकरण होने से सत्ता की अपेक्षा इस अंतर को घटित करना चाहिए, इसी के आगे दो लाइन बाद ये लिखेंगे। तो यहाँ जो लिखा है ना, प्रथम निषेक से लेकर अंतिम निषेक तक रचना होती है, यहाँ अपने सहूलियत के लिए लिखना सत्ता के, यानी सत्ता के प्रथम निषेक से लेकर। वो सर्व स्थिति विभक्ति है, क्योंकि यहां सर्व पद द्वारा सब निषेक लिए गए हैं, सभी निषेक है, ये सर्व विभक्ति। हरमैन उत्कृष्ट अध्याच्छेद किसको कहा, उत्कृष्ट बंध जिस समय हो रहा है उस समय उसका जो अंतिम निषेक है वो कितने काल तक जीव के साथ रहने की योग्यता है, जिसको हम कहते स्थिति बंध कितना हुआ है। अभी स्थिति बंध भी किसको गिनते हैं, ये तो कोई तो 7000 वर्ष और एक समय बाद उदय में आने हैं, तो उसमें तो सत्ता स्थिति तो उतनी पड़ी है। अंतिम निषेक में कितनी है? तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो उसको उत्कृष्ट अध्याचेत कहा। जिस समय उत्कृष्ट बंद हो रहा है उस समय सत्ता का पहला दूसरा तीसरा निषेक लेना है, और नया बंद वाला भी अभी सत्ता का ही हो गया, क्योंकि दोनों मिल जाते हैं, तो वो अंतिम समय तक ये सभी निषेक है, उसको हम सर्व स्थिति विभक्ति कहेंगे। अब रही उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति, अब किसको कहना? सर्व स्थिति विभक्ति तो कह दिया, अब उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति। सो इसमें उत्कृष्ट स्थिति बंद होने पर प्रथम निषेक से लेकर अंतिम निषेक तक की सब स्थितियों का ग्रहण किया है। वहां तो कितने निषेक हुए उनको सब निषेक है, तो उसको सर्व स्थिति विभक्ति कहा था। अब मैक्सिमम पॉसिबल है जो कुछ है उसको उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति कहेंगे। यहां सत्ता का प्रकरण होने से सत्ता की अपेक्षा इस अंतर को घटित कर लेना चाहिए, इतना विशेष जानना चाहिए। यह सब जहां ओघ उत्कृष्ट संभव हो, ओघ उत्कृष्ट संभव हो ने संगी पंचेंद्रिय जहां 70 कोड़ा कोड़ी का बंद कर रहा है, उस वहां पर यह बात घटित होगी। वहां ओघ उत्कृष्ट कहना चाहिए, उसमें ओघ की अपेक्षा उत्कृष्ट कहेंगे। और जहां ओघ उत्कृष्ट संभव न हो वहां आदेश उत्कृष्ट प्राप्त कर लेना चाहिए। जैसे अभी आपने एकेंद्रिय की बात की थी, तो एकेंद्रियों में बंध तो बहुत छोटा है, परंतु वहां तो सत्ता में तो एक समय कम 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, तो उतना उस आदेश की अपेक्षा वही मैक्सिमम है, वही उसका उत्कृष्ट है, वो आदेश उत्कृष्ट होगा। और जहां ओग की अपेक्षा उत्कृष्ट है, जो बंध ही करने वाले 70 कोड़ा कोड़ी के, तो वहां तो ओग उत्कृष्ट होगा। ये थोड़ा अटपटा है ना? अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो गति की अपेक्षा, दूसरे समय में तो और घटेगी वो, जैसे एक इंद्रियों में घटती चली जाएगी, बाद में वहां स्थिति कांडक भी होंगे। तो जहां जो उत्कृष्ट पॉसिबल है वहां लेना उसको। वो तो जघन्य ली थी, वो जघन्य ली, उत्कृष्ट नहीं ली। हाँ, एक ही समय के लिए जघन्य है, बाद में तो उसको संगी पंचेंद्रिय जितना बंद है, जब कभी पॉसिबल है उस समय को ही ग्रहण करना है। पर वो नारकी है, और नारकी में वो पहले समय में घटित होता है, क्योंकि वहां बंद पहले जैसा है, इसलिए वहां जघन्य में लिया था। यहां अपना प्रकरण उत्कृष्ट का चल रहा है, जब वो जघन्य विभक्ति और अजघन्य विभक्ति कहेंगे उसमें उसका प्रकरण होगा। अब ये जो हमने देखे हैं, कितने प्रकार देखे? उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य। तो ये सादी है क्या, अनादि है क्या? अनादि से ये उत्कृष्ट चल रहा है क्या? अनादि से जघन्य चल रहा है कि अनादि से क्या है, उसकी बात यहां पूछेंगे। जघन्य तो वो क्षपक श्रेणी में होगा। तो यहां कहते सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव, ध्रुव दिखता है, ध्रुव नहीं, ध्रुव और अध्रुव, अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ की अपेक्षा मौन्य की उत्कृष्ट विभक्ति, अनुत्कृष्ट विभक्ति और जघन्य विभक्ति क्या सादी है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है या क्या अध्रुव है, इसका भी हम उत्तर देखेंगे। तो वे सादी और अध्रुव है, किस किस को बताया? उत्कृष्ट भी अनादि से नहीं हो सकता है, वो सादी है। और कैसा है? उत्कृष्ट लगातार ध्रुव उतना का उतना उत्कृष्ट रहे, ये कभी नहीं बन सकता, उसकी लिमिट है, तो कहते अध्रुव है। तो उत्कृष्ट भी सादी और अध्रुव है, अनुत्कृष्ट भी सादी और अध्रुव है, और जघन्य भी सादी और अध्रुव है। अजघन्य की बात रह गई है, अभी उसको पूछ रहे हैं। जो उत्कृष्ट नहीं है, अनुत्कृष्ट नहीं है और जघन्य नहीं है, उसको अजघन्य कहेंगे। तो अजघन्य विभक्ति क्या सादी है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है या क्या अध्रुव है? तो कहते अनादि है। अनादि से मोहनी की कौन सी विभक्ति चली आ रही है? अजघन्य। तो वो ध्रुव है कि अध्रुव है? तो यहां दोनों बताइए। तो ध्रुव किस में कहेंगे और अध्रुव किस में कहेंगे? अभव्यों में तो ध्रुव कहेंगे, वो अजघन्य ही रहेगी, और जो भव्यों में अध्रुव कहेंगे। इसी प्रकार अचक्षु दर्शनी और भव्य जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि भव्य जीवों के ध्रुव विकल्प नहीं है। ये जो ध्रुव विकल्प बताया है वो अभव्यों की अपेक्षा है, भव्य जीवों में तो अध्रुव विकल्प पाया जाएगा। यानी इसी प्रकार ये जो हमने देखा था ना, अचक्षु दर्शनी जीव तो अनादि से है और 12वें गुणस्थान तक अचक्षु दर्शनी रहेंगे। जो भव्य है वो अनादि से ही भव्य है, कहाँ तक रहेगा? 14वें के अंत तक। अचक्षु दर्शनी 12वें तक। तो इसमें भी वो विकल्प भव्यों में क्या कहेंगे? अजघन्य है, वो अनादि से है और अध्रुव है, क्योंकि भव्य भले हो उसमें उत्कृष्ट भी होगा अनुत्कृष्ट भी होगा, बाद में जघन्य करके वो मोक्ष भी चला जाएगा। शेष मार्गणाओं में उत्कृष्ट जो शेष मार्गणा ही वो मार्गणा ही अध्रुव है ऐसा कहेंगे। मार्गणा ही सादी, अध्रुव कहने से भी अन्य मार्गणाएं सादी है। तो कहते हैं शेष मार्गणाओं में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य ये चारों सादी और अध्रुव है, क्योंकि वो मार्गणा कायम रहने वाली नहीं, ऐसे पंचेंद्रिय मार्गणा है या नरक है, गति है नरक गति, वो गति तो अनादि से नहीं है और नहीं कायम रहने वाली है, इसलिए वो अन्य अन्य मार्गणा में वो सादी और अध्रुव कहने में आएगा। विशेषार्थ मोनी की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति कदाचित कहे, यानी कभी कभी होती है। कदाचित शब्द से कदाचित विशेषण बना दिया। और जघन्य स्थिति विभक्ति क्षपक श्रेणी के सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंतिम समय में होती है। यानी जो जघन्य स्थिति विभक्ति वो तो सादी ही है, और उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट कभी कभी होती है, लगातार किसी जीव को हो ही नहीं सकती है, इसलिए तीनों सादी और अध्रुव कही है। अध्रुव यानी वही की वही नहीं रहती कभी, इसलिए अध्रुव कहेंगे उसको। किंतु अजघन्य स्थिति विभक्ति का विचार इससे कुछ भिन्न है। बात यह है कि जघन्य स्थिति विभक्ति के प्राप्त होने के पूर्व तक अनादि काल से अजघन्य स्थिति विभक्ति होती है, इसलिए तो वह अनादि कही है। क्या कहते हैं? जो जघन्य नहीं है वह सब अजघन्य है। आप कहेंगे बीच में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट भी हो जाएगी ना, फिर भी वो तो अजघन्य ही है। तो जघन्य केवल 10वें गुणस्थान के अंतिम समय को कहेंगे, उसके अलावा जो कुछ है वो सब अजघन्य है। तो कहते हैं ये जो अनादि से है, तो अनादि काल से अजघन्य स्थिति विभक्ति होती है, इसलिए वो अनादि कही है। और भव्यों की अपेक्षा अध्रुव तथा अभव्यों की अपेक्षा ध्रुव कही है। इसमें सादी विकल्प संभव नहीं है, क्योंकि अनादि से ही मोनीय है। जब तक दसवां क्षपक नहीं होता है तब उसको अजघन्य कहेंगे हम, तो अनादि से अजघन्य ही है, उसमें सादी हो ही नहीं सकता कोई, क्योंकि एक बार इसका अंत होने पर पुनः इसकी उत्पत्ति नहीं होती। अंत कब होगा? अजघन्य से जघन्य होना ही उसका अंत होना है। ये उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट सब उसमें ले लिया अजघन्य में, जो जगन्य नहीं वो सब अजगन्य है। अचक्षु दर्शन और भव्य ये दो मार्गणाएं क्रम से क्षीण मोह गुण स्थान के अंत तक, जिसे अचक्षु दर्शन 12वें के अंत तक है, और अयोगी केवली गुण स्थान तक कौन से भव्य मार्गणा निरंतर बनी रहती है। इसलिए इनमें ओघ प्ररूपणा अविकल घटित होने के कारण, अविकल यानी उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, जैसा ओघ में बताया वैसा इन मार्गणाओं में भी बताएंगे, क्योंकि ओघ में भी मोहनी की विभक्ति की बात चल रही है, सत्ता की बात चल रही है, और ये तो 12वें गुणस्थान और 14वें गुणस्थान है, वो सत्ता से भी पार हो गए हैं, और ये मार्गणाएं बदलती नहीं है, जो कुछ है वो अनादि से रहेगी। और एक तो अचक्षु दर्शन 12वें के अंत में समाप्त होगा और भव्य मार्गणा 14वें के अंत में समाप्त होगी, तो ओग की अपेक्षा कथन करते हैं और इसमें उसमें कोई अंतर नहीं है। उक्त प्रकार कहिए, मात्र भव्य मार्गणा में अजगन्य स्थिति विभक्ति का ध्रुवपना संभव न होने से, ये अचक्षु दर्शन वालों में कोई ध्रुव वाले भी होंगे, क्योंकि अचक्षु दर्शन इतना ही कहा है, तो उसमें अभव्य भी जीव होंगे तो उसको ध्रुव कहेंगे, और जो भव्य उनको अध्रुव कहेंगे, तो उसमें सादी सॉरी अजगन्य वो अनादि है, अभव्य में ध्रुव है और भव्य में अध्रुव है। अचक्षु दर्शन कोई भी ले लो, नित्य निगोद की बात नहीं, यहाँ पर संगी पंचेंद्रिय भी ले लो, वो भी जब तक दसवां गुणस्थान नहीं है तब तक अजगन्य है, यहाँ निगोद है या पंचेंद्रिय या देव है नारके उसकी चर्चा ही नहीं है, जो जगन्य नहीं वो सब अजगन्य है, ये बात यहाँ है। तो भव्य मार्गणा में अजगन्य स्थिति विभक्ति का ध्रुवपना नहीं है, ध्रुवपना नहीं, वो अजगन्य मिटकर जगन्य हो जाती है, इसलिए उसका निषेध किया है, किसका ध्रुव का निषेध करके अध्रुव ऐसा कहेंगे। शेष मार्गणाएं कादाचित कहे, अन्य मार्गणाएं कभी कभी होती है, इसलिए उनमें चारों स्थिति विभक्तियों के सादी और अध्रुव ये दो विकल्प कहे हैं, क्योंकि वो मार्गणा ही सादी होती है और अध्रुव होती है, जैसे नारकीय नरक गति है, तिर्यंच गति है, देव गति है, मनुष्य गति है, एकेंद्रीय पर्याय वो तो कायम वही पर्याय नहीं है, इसलिए उसको सादी का। केवल अभव्य मार्गणा रह जाती है क्योंकि यह कादाचित नहीं है, पर इसके ओग इसमें ओग के अनुसार जगन्य और अजगन्य स्थिति विभक्ति संभव नहीं है। अभव्यों में वो एक स्थिति वाला दसवां गुणस्थान संभव नहीं है, इसलिए इनमें भी चारों स्थिति विभक्तियां सादी और अध्रुव कही है। इस प्रकार सादी अध्रुव अनुगम समाप्त हुआ, बाकी बात कल देखें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत होलो। प्रेरणा भी